ओम शांति। हम सभी प्यारे बाबा को पहचान के स्वयं को बहुत बहुत भाग्यशाली अनुभव करते हैं, कारण कि शिव बाबा मिला, माना जीवन का आधार मिल गया और वो पूर्ण परमेश्वर जिसने ठान ही रखी है कि मुझे अपने बच्चों के दागों को मिटाना है जो कई जन्मों से अनेक विकृत संस्कारों में आत्माएं फंसी रहीं, आए थे तो पवित्र थे, देव रूप पूर्ण पवित्र आत्मा थे, पूज्य थे, लेकिन संसार के मैल में पड़ के, या कहें भूमि पड़ा मां ढावर पानी जो जी बही माया लपटाने, भूमि पे पड़ते ही दो युग बीत गए और तीसरे युग में आए तो आत्मा के देह अभिमान में आने से और विकारों की परतें चढ़ने से आत्मा के ऊपर जो मैल के संस्कार चढ़ने लगे, उस आत्मा को दूषित करते रहे और इस कारण से आत्मा की जो सुख शांति थी वो समाप्त होने लगी, उसके पुण्य के खाते खत्म होने लगे, आत्मा अपने को बैंक्रप्ट फील करने लगी, अर्थात बिल्कुल ही निधन के बन गए। और ये प्रभु की बहुत बड़ी मेहरबानी हुई, या कहें कि ये हमारे विश्व के मंच पर पहले से ही घटित होने वाली घटना है कि जब हम धर्म की ग्लानि के समय में पहुंचेंगे तो भगवान आएंगे। तो हम सब ने अपने अंतर जगत की आंखों से उस प्यारे पिता को पहचान लिया और पहचान के उससे अपना हाथ कभी न छुड़ाने का वायदा भी कर लिया। प्यारी आत्माओं, आप लोग बताओ, आपने उस प्रभु से पक्का पक्का वायदा किया है कि बाबा अब आप हमारे बने हो तो हम आपसे अपना हाथ कभी नहीं छुड़ाएंगे, कि छुड़ाने वाले भी हैं, बीच बीच में माया भी आ जाती है, लेकिन नहीं, हम बच्चों ने अपना जो तीसरा ज्ञान का नेत्र उस प्रभु की ज्ञान मुरली से खोला तो ये भी जानकारी मिली कि न सिर्फ हम आत्माओं के पाप ही धुलते हैं बाबा की यादों से, बाबा की मुरली से, लेकिन जो राज्य भाग हमने गमा दिया था, जो प्रारब्ध हमने गमा दी थी, जो अपनी धन संपत्ति को गमा दिया था, बाबा आकर हमारे भाग्य की झोली में वो भी भरपूर कर रहे हैं। ऐसा आप लोग मानते हैं या नहीं मानते हैं? मानते हैं ना? तो फिर भाग्य भी भरपूर होना है। और जीवन के अंदर हर इंसान किस चीज के लिए प्यासा है, ऐसा मत कहो कि पैसे के लिए प्यासा है, लेकिन हर इंसान से पूछो कि आज तुम दुखी क्यों है, तो उसकी पहली समस्या ये बन गई है कि हमारे रिश्तों से हम दुखी हैं, जो हमारे संबंध हैं उनसे जो हमें प्यार मिलना चाहिए, जो स्वार्थ रहित प्यार मिलना चाहिए, उससे हम परेशान हैं। आज बाबा मिला तो कौन मिला, हमारा सर्व संबंधी मिला। और आपने अनुभव किया होगा कि जब आप विकट समस्या में फंसे होंगे और आपने बाबा के चैलेंज कर दिया होगा, बाबा अब तुम ही संभालो, तो कौन संभालता है? बाबा संभालता है कि नहीं? और आपके लिए एक बहुत बड़ा आश्चर्य बन जाता है कि हम तो बिल्कुल बिहड़ में खड़े थे, हमारे पास कोई साधन नहीं था और हमारी ट्रेन छूटी जा रही थी, लेकिन न जाने कौन आया और एक टेम्पो चला के हमको स्टेशन तक उसने समय से पहुंचा दिया। तो कौन था वो? बाबा था। तो बाबा हमारा हर रीति से मददगार, हर क्षण हर सेकंड हमारी, जैसे वो सब कुछ रक्षा करता है। क्यों करता है, किस लिए करता है? आप कहेंगे वो तो है ही सागर, वो प्यार करता है आपसे। मालूम है आपको, शिव बाबा जैसा प्यार दुनिया में कोई नहीं कर सकता कि मालूम नहीं है कि और लोग भी बहुत प्यार करते हैं, कि केवल केवल बाबा जैसा प्यार तो कोई नहीं कर सकता है। कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो आपका सर्व संबंधी है ना, माता पिता बंधु सखा। अभी जो बाबा के ब्राह्मण बच्चे होंगे वो ऐसा जरूर अनुभव करते होंगे कि अब हमारे लिए कोई संबंधों की परेशानी नहीं है, बाबा हमें सर्व संबंधी मिल गया है। और आपने बाबा के साथ संबंध जोड़ने के बाद ये जरूर अनुभव किया होगा कि अगर आपकी बुद्धि की लाइन क्लियर है बाबा के साथ में, तो हमारे जीवन के बहुत सारे ऐसे फेस आते हैं, बहुत सारी बातें आती हैं, और उस समय हम इस धर्म संकट में होते हैं, हम क्या निर्णय लें, ये करें वह वो करें। और यदि हमारी बुद्धि की लाइन बाबा के साथ क्लियर है तो क्या अनुभव होगा? थोड़ी देर में आपको अंदर से उत्तर आने लगेगा, या आपने बाबा की मुरली पढ़ के अनुभव किया होगा तो आपके अंदर वो उत्तर आने लगेगा, क्या बहुत हमको क्या करना है। तो बाबा जैसे बुद्धिवानों की बुद्धि है, सोचो। और अगर आपके शरीर की कोई समस्या बनती है और उस समय भी आप बाबा को चैलेंज करते हैं, बाबा इन डॉक्टर्स ने तो मेरे को जवाब दे दिया है, अभी मैं क्या करूं, अभी तुम ही मेरे सुप्रीम चिकित्सक हो या डॉक्टर हो, थोड़ी देर बाद आपको क्या लगता है? बाबा ने जैसे आपको डॉक्टर बन के ठीक कर दिया है, आपकी शरीर की प्रकृति नॉर्मल होती जा रही है और आप अच्छे बनते जा रहे हैं। तो आप सोचो, आप इस विश्व के अंदर कौन सी आत्मा है? संसार की आत्माएं जिन्होंने बाप को नहीं पहचाना है, उनसे अलग हटके, भले आप उनके बीच में रहते हैं, थोड़ा सा अलग हटके आप कौन सी आत्मा है? बहुत बहुत विशेष आत्मा है, ऐसा आप अनुभव करते होंगे। और जब प्रतिदिन बाबा के साथ अमृत वेले बैठते हैं तो अपने को जरूर खुशी में नाचते होंगे, क्या मैं वो विशेष आत्मा हूँ जिसको भगवान ने अपने लिए चुना है? बोलो, ऐसा है कि नहीं है? हैं, आप विशेष आत्मा हैं कि नहीं है? विशेष आत्मा है ना। तो अब एक बात आती है सामने कि भगवान हमें जो सारे संसार का नियंता है वो हमें कितनी दिव्य शक्तियां दे रहा है, तो हमारे अंदर क्या नहीं रहना चाहिए जो हमारे भाग्य को खत्म कर सकता है? अभी आपको सोचो, आप सभी बैठे हैं, किसी को गिफ्ट में एक चीज मिले, दूसरे को थोड़ा कम करके मिले, तो दूसरे को कैसा लगेगा? हमको कम कैसे मिला? कम लेना चाहेंगे क्या? हाँ, कम लेना चाहेंगे? नहीं लेना चाहेंगे। हाँ, तो जब कम लेना नहीं चाहते हैं तो कम पुरुषार्थ क्यों करें? बोलो, कहेंगे क्या करें, माया आ जाती है। नहीं, अगर आप सचमुच बजरंग बली हैं, हनुमान जिसने अपने अभिमान का हनन किया हो, तो माया को आने देगा क्या? बोलिए, नहीं आने देगा। तो बाबा की मुरली में कितनी अच्छी अच्छी बात निकलती है। बच्चे अपने अंदर थोड़ा भी क्रोध भी नहीं आने दो, परिस्थितियां तो आएंगी, लेकिन इतना तो कर ही सकते हैं कि मुख से कोई शब्द ना निकले, भले अंदर ही अंदर बहुत बहुत हाँ बहुत खून का घूंट पी जाने लगे, लेकिन मुख से ना निकले। अगर मुख से नहीं निकलेगा तो क्या होगा? आप बहुत सारी परेशानियों से बच जाएंगे। धीरे धीरे क्या होगा, आपको लोग बहुत अच्छा कहने लगेंगे, कहेंगे देखो सामने वाले ने कितना इनको हर्ट किया, कितना कितना बोला, लेकिन इसने, इस आत्मा ने अपनी शालीनता नहीं छोड़ी। तो मना, आपने अपने अंदर के कौन से विकार को जीत लिया? अहंकार को जीत लिया, है ना। अहंकार जो है वो इंसान को कैसा बना देता है ना, बहुत ही कहना चाहिए बिल्कुल बेताब इंसान बना देता है। वो सो भूल जाता है अहंकार में इंसान, कि मैं भूल क्या रहा हूँ, कर क्या रहा हूँ। और नम्रता इंसान को बहुतों के दिलों पर राज करने वाला बना देता है। एक बार क्या हुआ कि समुद्र को नदी ने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम कहो तो मैं एक मकान उखाड़ के ला सकती हूँ, तुम कहो तो मैं कोई बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ के तुम्हारे सामने रख सकती हूँ, किसी व्यक्ति को ला सकती हूँ, मेरे में तो बहुत ताकत है, मैं बहुत वेगवती होके बहती हूँ। समुद्र को हंसी आई, उसने समझ लिया इसको अहंकार है। बोला मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे थोड़ी सी घास चाहिए। नदी ने कहा ये तो तुमने बहुत छोटी चीज मेरे से मांग ली, थोड़ी सी घास चाहिए। वो गई जो बहुत अच्छी घास लगी हुई थी, हरियाली के खेत बने हुए थे, उस पे जोर से बेग मार के उसने बहना शुरू कर दिया। नदी ने क्या हुआ, जो घास थी वो उखड़ गई क्या? नहीं, जैसे जैसे वो बेग भरती थी घास झुक जाती थी, और नदी ऐसा करते करते थक गई। उसने इतना तीव्र गति से बहाव भरा, लेकिन फिर भी घास जो थी वो उखड़ी नहीं। अब तो नदी को बहुत शर्मिंदगी हुई कि मैं समुद्र को जाकर क्या बोलूंगी। जब वो समुद्र के पास गई तो उसने कहा मुझे क्षमा करिए, मैं आपकी बात को पूरा नहीं कर सकी। तब समुद्र ने हंसते हुए उसको उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? कहा देखो, अहंकार व्यक्ति को नीचे गिरा देता है, और नम्रता जो है वो इंसान को नीचे से ऊपर उठा देती है ना। और अगर आपने इतना बेग लगाया, लेकिन घास के अंदर नम्रता थी, वो अपने नम्रता के कारण झुक के उसने आपको भी हरा दिया, है ना। तो नम्र इंसान जो है वो सभी का सम्मान करना जानता है। आज हम लोग जब बाबा की मुरली पढ़ते हैं तो कभी कभी इतना आश्चर्य लगता है कि भगवान जो करण करावनहार है वो भी क्या कहता है, बच्चे आई एम योर ओबीडिएंट सर्वेंट, मैं तुम्हारा आज्ञाकारी सेवक हूँ। कहा तो हम बिल्कुल पतित आत्मा बन गए, वैल्यूलेस बन गए, लेकिन भगवान फिर भी जो इतना महान है, जो सदैव पवित्र रहने वाली हस्ती है, वो क्या कहता हमसे, बच्चे आई एम योर ओबीडिएंट सर्वेंट, मैं तुम्हारा आज्ञाकारी सेवक हूँ। अभी सोचने की बात है कि भगवान के अंदर कितनी नम्रता है, और ये उसकी बहुत बड़ी कृपा है कि हम कैसी भी मैली कुचेली कैसे भी खराब संस्कारों की आत्माएं आती हैं भगवान के घर में, और धीरे धीरे वो व्हाइट वॉश करके क्या बना देता है, हमको शुद्ध हीरा बना देते हैं। तो आप सोचो, ये गुण तो हम लोगों को जरूर अपने जीवन में ले लेना चाहिए। कौन सा गुण लेना चाहिए कि हम अपना अहंकार छोड़ के प्रभु समान कैसे बने। सोचिए कैसे बने, भला आपको कोई बहुत बड़ा सम्मान मिल जाए, बड़े बहुत बड़ा पोजीशन मिल जाए, लेकिन फिर भी उतना होते हुए भी हमारे जीवन की नम्रता न खत्म हो। तो जितना ही हम अपने जीवन में नम्रता का संस्कार लाते रहेंगे, और तो हम दूसरों को सम्मान भी देना सीख लेंगे, और समय पर व्यक्ति को सम्मान देने से, व्यक्ति की बात को सम्मान देने से आप हमेशा सम्मान के पात्र बने रह सकते हैं, और आपकी खुशी में कमी नहीं आएगी। तो हम इस समय बाबा के घर में किस लिए आते हैं, अपने संस्कारों को श्रेष्ठ बनाने के लिए आते हैं कि हम ऐसे संस्कारित आत्मा बने ताकि भविष्य में जो आने वाला नया सतयुगी संसार में है उसमें हम श्रेष्ठ देव पद प्राप्त कर लें। तो अभी से हमें अपने अंदर के संस्कारों को खेती करनी पड़ेगी ना, और जितना जितना ये जो नम्रता का गुण है ना, ये हमें ईश्वरीय सेवा में बहुत मदद करता है। कि चाहे कितना भी अहंकारी व्यक्ति आपके सामने आएगा, आपको क्रोध तो आएगा ही नहीं। आप सोचिए, हम बहने सेंटर पे रहते हैं तो क्या हमारे सामने ऐसी ऐसे आत्माएं नहीं आती हैं जो बहुत अहंकारी होती हैं? हाँ? और हमने देखा है कि अगर हमने उनको उस अहंकार की भाषा, हमारे यहाँ एक व्यक्ति आया, बहुत दिन पहले की बात है, वर्षों पहले की, वो किसी डॉक्टर को आश्रम दिखाने के लिए लाया था। तो उसने वो, मैंने उसको भी कहा, मैंने कहा भाई साहब आप भले रथ वाहक बन के आए हैं, आप बोला मेरे को बिल्कुल नहीं समय है, और मेरे को आप कहिए नहीं आने के लिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर भी आप थोड़ा सा समय निकाल लीजिए यहाँ के लिए। बोला आपका समय क्या है? मैंने कहा हम लोग 8 बजे ओवर कर देते हैं। तो बोले नहीं, मैं 9 बजे से पहले फ्री नहीं हूँ। मैंने अपने मन में सोचा कि इसको धीरे से, बाबा का बच्चा तो बना नहीं है। मैंने कहा अच्छा आप 9 बजे आते हैं, हम 10 मिनट आपको टाइम देंगे, ज्यादा समय नहीं देंगे। बोला ठीक। अभी देखो मेरे को ऐसा लगा कि इसने एक बात तो मेरी मानी कि मैं आऊंगा जरूर। आया, उसको थोड़ा थोड़ा बताते थे और 10 मिनट में उनको वापस कर देते थे। उसकी मैंने एक दिन, मैंने नहीं पूछा, उसने ही एक दिन मेरे से कहा, दीदी मैं कुछ आपको अपने जीवन की कुछ बात सुनाना चाहता हूँ। देखिए उसके अंदर परिवर्तन आया। मैंने कहा बताइए आप क्या। तो उसकी पत्नी उसको छोड़ के चली गई थी, उस कारण से वो इतना चिड़चिड़ा था। खैर मैंने उसको कहा आप बाबा का बच्चा बनिए, धीरे धीरे देखिए वो भी ठीक हो जाएगा। एक दिन ऐसा आया कि उसकी पत्नी वापस आ गई, दोनों प्यार से जीवन जीने लगे। अभी वो क्या है, बाबा का बिल्कुल एकदम पत्रकार है, लेकिन बाबा के कार्योगी आत्मा बन गए। क्या कहता है, मेरे जीवन को जीए दान देने वाले आप। तो हमें क्या सहन करना पड़ा, अगर हम उसके क्रोध को देख के थोड़ा सा भी क्रोधित होते तो नहीं काम चलता था ना। लेकिन हम अंदर ही अंदर हंसते रहे कि देखो ये जो है ना, बिल्कुल एकदम जो जोकर होता है ना उसकी तरह ये क्रोध कर रहा है। और धीरे 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 वो एक अच्छा बच्चा बन गया बाबा का। तो हम अगर अपने अहंकार को छोड़ देते हैं और धीरे धीरे हमारे अंदर नम्रता का संस्कार आ जाता है, तो एक तरह से हम नम्रता के संस्कार का अपने जीवन में बीजारोपण करते हैं और हम बहुतों की सेवा के अधिकारी बन जाते हैं। यही तो अपना कर्म है ना। भगवान इस दुनिया में किस लिए आए हैं? बच्चे जो मेरे भूले भटके बच्चे हैं, जो तड़फ रहे हैं, जो रो रहे हैं, क्या तुमको उनकी आवाज नहीं सुनाई देती है? बाबा पूछते हैं ना मुरली में, करोड़ों की आवाज नहीं सुनाई देती है? तो आप क्या सोचते हैं, मैं बात तो करता हूँ, ज्ञान भी सुनाता हूँ, लेकिन इतना ध्यान ही नहीं देते, मैं क्या करूँ? लेकिन नहीं, ये जो अच्छे संस्कार आपके हैं, यही उनको झुकाने के कारण बनते जाएंगे। एक बहुत अच्छे विचारक हुए हैं टॉलस्टॉय, उनके पास एक व्यक्ति आया और उसने पूछा कि जीवन के अंदर संस्कारों का प्रत्यारोपण करना क्यों जरूरी है? उनके पास एक छोटा सा सामने लोहे का टुकड़ा पड़ा था। उन्होंने कहा, इस लोहे के टुकड़े का मूल्य क्या है? उस समय के हिसाब से उसने कहा 1 रुपया। उन्होंने उसे हथौड़ी से पीटा और एक बड़ा पत्रा बना दिया। कहा, अब इसका मूल्य क्या है? तो कहा 100 रुपया, 10 रुपया। अच्छा, फिर उन्होंने किसी तरह से उसको एक सुंदर मूर्ति का रूप दे दिया। पूछा, अब इसका मूल्य क्या है? कहा 100 रुपया हो गया। कहा, अभी तुम ऐसे ही समझो कि जब तक हम छोटे बच्चे को संस्कारित नहीं करते हैं, उसका मूल्य नहीं बढ़ता है। और वो माँ जो बच्चों को श्रेष्ठ संस्कार देती है और उनके अंदर श्रेष्ठ संस्कारों का बीजारोपण करती है, प्रत्यारोपण करती है, तो क्या होता है, वो बच्चा संस्कारित होने के बाद में बहुत डिग्रीज माना बहुत ऊंची स्थिति में पहुंचता है और बहुत बड़े बड़े कार्य कर लेता है। आप बताओ, शिव बाबा अपनी बड़ी माँ नहीं है क्या? है ना बड़ी माँ? तो हम तो कहाँ पड़े थे, बिल्कुल ही जंगल में पड़े थे, है ना, गंदे पत्थर के रूप में पड़े थे, लेकिन बाबा ने धीरे से अपना बच्चा बना लिया है। और बच्चा बना के रोज धीरे 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 प्यार की लोरी देते देते, है ना, उसमें बाबा बीच में थोड़ा हथौड़ा भी लगाते हैं ना, कि नहीं लगाते हैं? हथौड़ा भी लगाते हैं, बच्चे ऐसे नहीं करेंगे तो देखो धर्मराज में तुम्हें पकड़ा जाएगा, धर्मराजपुरी में तुमको पकड़ा जाएगा, बाबा कहते हैं ना। बच्चे सोचते नहीं, बचने वाले तो है नहीं, हम कहीं भी कहीं से भी बच के नहीं जा सकते, धर्मराज खड़ा है सामने, इसलिए हमें तो बाबा की श्रीमत को मानना ही मानना है, नहीं मानेंगे तो भाग्य कम हो जाएगा। तो बच्चों के लिए वो भी क्या है, छोटा सा हथौड़ा है कि हमें परिवर्तन करना है। और जैसे जैसे हम बाबा की मुरली सुनते जाते हैं, है ना, और अपने दिल को थोड़ा थोड़ा हथौड़ा लगाते जाते हैं, तो पतरा हो जाता है, माना हमारे अंदर कुछ संस्कारों का प्रत्यारोपण होने लगता है। और उसी पतरे की हम मूर्ति कैसे बनते हैं, जब हम उसको अपने जीवन के आचरण में लाने लगते हैं। बाबा रोज मुरली में हमको यही तो कहता है, क्या कहते हैं बच्चे, तुम अगर बाप की श्रीमत को मान के चलोगे तो तुम मेरे दिल पर राज्य करेंगे, है ना। बाबा हमको कितना प्यार करता है, कितना प्यार करता है, ये तो आप अनुभव करते होंगे, है ना, लाड कोट से रखता है। तो आपको किस लिए वो इतना लाड कोट करता है कि बच्चे जो है ना, वो ये जो जीवन उनको मिला है, ब्राह्मण जीवन मिला है, ये केवल और केवल सच्ची कमाई करने के लिए मिला है ना। और ये जितना जितना इसको सच्ची कमाई करके हम सफलीभूत कर लेंगे, अपने समय को व्यर्थ नहीं कमाएंगे, सफलीभूत कर लेंगे, तो कई जन्म जन्मांतर के लिए हम बहुत ऊंचा अपने जीवन में श्रेष्ठ पद प्राप्त कर लेंगे। ठीक बात है ना। तो कहने का मतलब है कि हम अपने जीवन के अंदर बाबा की श्रीमत को यूं ही ना उतारते। जैसे बाबा कहते हैं, बच्चे क्रोध अच्छी चीज नहीं है, क्रोध नहीं करना चाहिए। अभी क्रोध क्या है, है ना? क्रोध हमारे अंदर कब आता है? जब हम कुछ अपने सिद्धांतों को भूल जाते हैं, है ना? जैसे अभी थोड़े दिन पहले एक रेडियो वार्ता हो रही थी, मॉरिशस में मैं थी, तो उन्होंने हमसे एक प्रश्न पूछा कि मेरे घर वाले, मेरे बच्चे जो हैं, वो मेरे को सम्मान नहीं देते हैं, हमको पूछते नहीं हैं, तो हमको क्या करना चाहिए? तो मैंने उनको ये उत्तर दिया, देना सीखो। बाबा ने हमको क्या सिखाया? अगर तुम्हें किसी से प्यार चाहिए तो उसके साथ शुद्ध प्यार करना सीखो, विकारों का प्यार नहीं, शुद्ध प्यार करना सीखो। अगर तुम्हें कुछ सम्मान चाहिए किसी से, पहले उनका सम्मान, उनको सम्मान देना शुरू करो, है ना? अगर तुम्हें दूसरे का कभी सहयोग की जरूरत महसूस होती है, वैसे सहयोग कराने वाला तो बाबा बैठा है, लेकिन कोई आत्मा निमित्त बन जाती है, लेकिन आप भी उस आत्मा को पवित्र सहयोग देने का ख्याल रखो। तो आप जैसे जैसे देना सीखते जाएंगे, है ना, कौन क्या देना सीखते जाएंगे, उसको सुख देना, जैसे बाबा मुरली में कितना अच्छा निकालते हैं, बच्चे ऐसा मीठा बोलो जो किसी को दुख ना मिले, है ना? अभी हम लोग पूरे दिन में न जाने कैसे व्यवहार, किसके लिए क्या बोल देते होंगे, किसको कैसा बोल देते होंगे, कुछ मालूम पड़ता है क्या? नहीं मालूम पड़ता है, बोलते चले गए, लेकिन अभी बोलेंगे क्या? नहीं। अगर मुख में कुछ आने वाला भी होगा तो अपने को रोक लेंगे। क्यों रोक लेंगे? नहीं, मैं अगर ऐसा कहूंगा ना तो इसका आत्मा को बहुत दुख हो जाएगा, भले ये सामने से गलत व्यवहार कर रहा है, लेकिन अपने मुख को बंद रखो। क्यों? बाबा ने कहा है बच्चे किसी को दुख नहीं देना है। ठीक बात है ना? ये बात तो आपको भी पसंद आती है, आती होगी, आती है कि नहीं आती है, कि किसी को दुख नहीं देना है। अभी आप सोचो, ये भी जो किसी को दुख नहीं देना है, ये बहुत बहुत बड़ी तपस्या है। क्यों बड़ी तपस्या है? क्योंकि अभी सारी दुनिया ही, मनुष्य आत्माएं जो है ना, वो संस्कारों में विकृत हो चुके हैं। कभी कैसे हैं तो कभी कैसे हैं, कभी कैसे हैं तो कभी कैसे हैं, और उनके बीच से आपको पास ऑन होना होता है, होना होता है ना? लेकिन उनके बीच से निकलते हुए भी आप सेफ साइड निकल जाएं, आपके द्वारा किसी को दुख न मिले, उसके लिए युक्ति बाबा हमें सिखाता है। कौन सी युक्ति सिखाता है? बच्चे किसी को देखो मत, किसी को देखेंगे तो क्या होगा, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। समझो अगर आपने किसी का अवगुण देख लिया और आपको पसंद आ गया, आप भी वैसे ही करने लगे, तो आपको नुकसान नहीं होगा क्या? होगा ना नुकसान। इसलिए बाबा ने कहा किसी के अवगुण को न देखो, तो क्या समझो? वो करो जो बाबा की श्रीमत के प्रमाण है, भले इसमें कुछ आपको अपने को संभालना पड़ जाए, अपने को कंट्रोल करना पड़ जाए, है ना? लेकिन संभालो, है ना? इसी तरह से काम विकार है, बाबा ने कहा विकारों से दूर रहो। ये तो बाबा ने बहुत अच्छा किया हम आत्माओं के साथ, जैसे भगवान ने मेहरबानी कर दी हमको, पवित्रता की शक्ति देके, पवित्रता का बल देके, है ना? क्योंकि पवित्रता ही आत्मा के लिए जीव दान है, उसका शरीर भी स्वस्थ रहता है, उसका मन भी स्वस्थ रहता है, और उसका दूसरे के लिए व्यवहार भी शुद्ध रहता है। पवित्रता इतनी अच्छी चीज है, तो ये बाबा ने हमें वरदान नहीं दिया क्या? प पवित्रता का आप सबको बाबा ने वरदान नहीं दिया क्या? बोलो, दिया कि नहीं दिया? दिया ना बाबा ने वरदान। तो सोचो, जहाँ पवित्रता का गुण आपके अंदर आता जा रहा है, और कहें कि आपके अंदर धीरे धीरे क्रोध आपने मेंटली सोच लिया, मुझे नहीं करना है तो नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, तो सोचो आप विकारों को जीतते जाएंगे तो आपके अंदर कौन कौन से गुण आते जाएंगे? पवित्रता आएगी तो आपके अंदर श्रेष्ठता आएगी, भोजन की शुद्धता आ जाएगी आपके अंदर, आपके विचारों की शुद्धि होने लगेगी, आपका मन बाबा के साथ जो परम पवित्र सत्ता है उसके साथ मन जुड़ना शुरू हो जाएगा, उससे आपको दिव्य शक्तियां आने लगेंगी, प्राप्त होने लगेगी कि आप जो मन में सोचेंगे वो पूर्ण होगा। एक छोटी सी कहानी है कि एक बार एक व्यापारी जो था वो जंगल में जा रहा था, और चलते चलते वो थक गया, तो उसने सोचा कि एक पेड़ के नीचे विश्राम कर लूं। वो उस पेड़ के नीचे सो गया। जब सो के उठा तो उसे भूख लगने लगी, लेकिन वो जो पेड़ था ना वो बहुत विशेष था कि उसके नीचे जो बैठ के जो संकल्प करता था वो पूर्ण होता था। उसे तो व्यापारी को तो मालूम ही नहीं था। वो उसके नीचे जब सो के उठा तो उसने कहा, कितनी अच्छी नींद आई मेरे को, लेकिन अब तो मुझे भूख लगने लगी है, अब मैं क्या करूं, और बहुत जोर से भूख लग रही है, कितना अच्छा हो कि मेरे पास भोजन होता। तब तक उसने देखा कि हवा में लहराती हुई उसके पास बहुत सुंदर भोजन की थाली आ गई। उसे बहुत आश्चर्य हुआ, अब उसे तो भूख लगी थी, उसने वो खाना खा लिया। फिर उसने कहा, कितना अच्छा होता अगर मुझे शीतल जल मिल जाता। थोड़ी देर में उसने देखा तो एक लोटे में पानी, उसके लिए बहुत सुंदर पानी आ गया। अब उसने पानी पी तो लिया, वो अपने मन में सोचने लगा कि ऐसा तो कभी होता नहीं कि अचानक मुझे खाने की थाली मिल जाए या पानी का जल मतलब लोटा मिल जाए, जरूर यहाँ कोई, उसने अपने मन में क्या सोचा, जरूर इस पेड़ के अंदर कोई भूत बैठा है, प्रेत आत्मा रहती है। और बस उसके अंदर डर शुरू हो गया। और क्या हुआ, उसने कहा वो अगर होगा ना मुझे खा लेगा। उसने इतना ही सोचा तब तक उसके सामने, क्योंकि उसने संकल्प किया ना, था नहीं भूत प्रेत आत्मा थी नहीं, लेकिन उसने संकल्प किया कि अगर वो होगा तो वो मुझे खा लेगा। तो आज आप देखो, हम बाबा के बच्चे जो हैं, बाबा हमारे लिए, उसने एक कल्प वृक्ष, योगा मीन्स क्या, कल्प वृक्ष उसने हमारे लिए तैयार कर दिया, और हम भगवान की छत्र छाया के नीचे बैठे हैं, माना मन इच्छित फल पाने वाले वृक्ष के नीचे बैठे हैं। बोलिए, आपको ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? आप जो जो कि नहीं होता है, ऐसा हजारों का अनुभव होगा कि माताएं भी हमारी अनुभव करती होंगी कि जो चाहते हैं वो मिलता है, चाहे कितना भी असंभव कार्य है हो जाता है। कौन कराता है? बाबा कराता है। तो आप जो बाबा की छत्र छाया रूपी वृक्ष के नीचे बैठे हैं, वो कौन से वृक्ष के नीचे बैठे हैं? आप मन इच्छित फल पाने वाले वृक्ष के नीचे बैठे हैं। बोलो, बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? बैठे हैं ना। अभी आप सोचो तो, आप बाबा के वृक्ष के नीचे अगर बैठे हैं तो आपको कौन संकल्प करना चाहिए, या आप कौन सा संकल्प करेंगे? विचार करो, आप ये सोचेंगे कि वो जो पड़ोसी है वो बहुत सुखी से रहते हैं, उसके पास तो गाड़ी बंगला है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, हा? उसका सब नष्ट हो जाए, ये सोचेंगे क्या? नहीं, अशुभ तो सोचेंगे नहीं ना। लेकिन उसके लिए भी शुभ विचार क्या चाहेंगे कि देखो, मेरे पास, मैं साधारण होते हुए भी मुझे शहंशाह, विश्व का शहंशाह मिल गया है मेरा भाग्य उदय करने वाला, काश इसको भी बाबा मिल जाए, ये भी बाबा को पहचान ले, तो इसके पास जो धन संपत्ति, जो तन मन समय शक्ति जो है, इसकी भी सफल हो जाए। आप शुभ संकल्प करेंगे कि नहीं है? ऐसा संकल्प करेंगे ना, तो जो अभी इस समय आप जो संकल्प जिस आत्मा के लिए करेंगे तो क्या होगा, उसको वो फलीभूत होने लगेगा। और अपने अंदर का जो बैर है किसी के प्रति, उस बैर को या तो फुल स्टॉप लगा दो। चलो आप किसी के लिए अच्छा नहीं सोच सकते हैं, लेकिन बुरा भी नहीं सोचो। समझो उसने आपको पिछले दिनों में बहुत कष्ट दिया है, आपका बहुत नुकसान भी किया है, आपको दर्द भी है, लेकिन आपने अपने अंदर क्या दृढ़ संकल्प किया, मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचूंगा, मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं सोचूंगा, और बस चलो मैं अच्छा नहीं सोच सकता हूं, बुरा नहीं सोचूंगा, लेकिन मैं क्या सोचूंगा। अगर उसका फिर संकल्प आता है तो आप क्या सोचेंगे, शिव बाबा इसको भी सद्बुद्धि मिल जाए, है ना? नहीं, क्योंकि ये जो दूसरों को दुख देने वाला कर्म करता है इससे इसका भाग्य खत्म होता है। तो आप अपने अंदर क्या शुभ संकल्प करेंगे, बाबा इसको भी सद्बुद्धि मिल जाए, करेंगे ना संकल्प, तो क्या होगा कि आप शुभ सोचेंगे तो आपके शरीर के अंदर जो कहना चाहिए कि जो सिक्रीशंस होते हैं, जो धाराएं बहती हैं, वो पॉजिटिव थॉट से वो धाराएं आपके शरीर के लिए भी पॉजिटिव होने लगती हैं। आपको अच्छा मस्तिष्क फील होने लगेगा, आपके भोजन में शुद्धि का संकल्प आने लगेगा, क्योंकि आप सबके लिए अच्छा सोचते हैं, है ना? और कभी भी हम अपने मन में ये नहीं सोचेंगे क्रोध के वश इसको भी पनिशमेंट मिले, नहीं, कभी मत सोचो इसको पनिशमेंट मिले, क्योंकि उन सबके लिए तो धर्मराज बैठा है। हम किसके लिए बैठे हैं, जो बाप का कार्य सो मेरा कार्य, ठीक बात है ना, जो बाबा का कार्य सो मेरा कार्य, इसलिए मुझे कहीं पर भी अपने जीवन के अंदर वो नहीं करना है जो मेरा नुकसान हो जाए। क्यों, आपके सामने एक लक्ष्य है। आप जब दूसरे को ज्ञान सुनाते हैं तो क्या कहते हैं, नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण बन जाए, और नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी कहलाए, कहते हैं ना, लक्ष्य देते हैं कि नहीं। अगर हम अपने जीवन का लक्ष्य हमने निर्धारित कर लिया है कि हमको श्री नारायण जैसा ही तो बन है, तो पहले से अपने अंदर श्री नारायण जैसे लक्षण भी तो धारण करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे ना। तो बाबा ने हम लोगों को जो धैर्य, जो प्रेम की शक्ति सिखाई, वो अतुल्य है। अपने जो ब्रह्मा बाबा हुए हैं, ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी आपने सुनी होगी, और ब्रह्मा बाबा जैसा श्रेष्ठ संस्कार वाला व्यक्ति, उनका जैसा कोई सानी हुआ ही नहीं है। तो जब शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में नहीं भी प्रवेश किया था, उस समय से ही बाबा बहुत गुणवान आत्मा थे, और शाम को या सुबह बैठ के खुद भी भक्ति करते थे, और माँ यशोदा माना उनकी पत्नी, वो भी भक्ति बहुत करती थी। तो एक बार की बात है कि उनको कलकत्ता में थे बाबा, और उनको कोई ट्रेन पकड़नी थी, ट्रेन के टिकट आ चुके थे, और माँ यशोदा को भी मालूम था कि ट्रेन की टिकट है और हमको ट्रेन में जाना है, लेकिन उनको समय का ख्याल नहीं रहा, और वो भक्ति की जो उनको अपनी भक्ति जो उनका नियम था उसको पूरा करने में लगे रहे। बाबा ने उनसे कुछ नहीं कहा, ब्रह्मा बाबा ने, उस समय तो दादा लेखराज के नाम से जाने जाते थे, दादा ने उनको कुछ नहीं कहा। ट्रेन का टाइम आ गया, यशोदा माँ उठ के आई और उन्होंने बग्गी में सामान रखवाया, बाबा भी चुपचाप। बाबा को मालूम था ट्रेन नहीं मिलेगी क्योंकि देर तो हो ही गई है, लेकिन बाबा शांत रहे। बाबा ने एक शब्द भी माँ यशोदा को नहीं बोला और बाबा भी बग्गी में बैठ के जब वहां पहुंचे तो मालूम पड़ा क्या हो गया, ट्रेन छूट गई। माँ यशोदा को लगा खराब मन में आया कि देखो मैं इतना देर कर दिया तो आज ट्रेन छूट गई। खैर बाबा वापस आ गए, ट्रेन की टिकट कैंसिल कराई गई, दूसरे दिन की टिकट बनी। और दूसरे दिन जब यशोदा माँ बैठी पूजा करने के लिए तो समय से पहले उठ गई कि नहीं आज ट्रेन मिस नहीं होनी चाहिए, और तैयार होके बाबा के सामने आके खड़ी हो गई कि मैं तैयार हो गई हूँ। बाबा ने ट्रेन सामान रखवाया, गए तो ट्रेन तो मिल ही जानी थी। तो फिर उनके जो भाऊ थे भतीजे थे बाबा से पूछा, ब्रह्मा बाबा से पूछा, बाबा आपने अगर पहले ही यशोदा जी को बता दिया होता तो वो जरा भक्ति कम करके जल्दी उठ जाती थी, आपने उनकी गलती को उस समय क्यों नहीं बताया। बाबा ने कहा नहीं, ये गलती फिर होती थी, लेकिन अभी उनको समझ में आ गया है कि हमको हर काम समय से करना चाहिए। आप सोचो ब्रह्मा बाबा के अंदर कितनी नम्रता थी, कितनी सहनशीलता थी, और ये एक उनका विलक्षण गुण था, तभी तो भगवान ने उनको चुना ना। और उन्होंने अपना सर्वस्व लगा दिया, बाबा की उस समय रही होगी करोड़ों की संपत्ति, लेकिन बाबा को कभी भी अहंकार नहीं आया। और आप सबने हिस्ट्री सुनी होगी बाबा की, तो उस हिस्ट्री में आपने क्या सुना कि एक टाइम ऐसा आया कि बाबा को जब पाकिस्तान से कराची से पोत में बैठ के इंडिया आना था, आबू रोड स्टेशन पे उतरना था, तो बहुत सा सामान, समय नहीं कम होने के कारण बहुत सा सामान रह गया था वहीं पर, पोत में नहीं लाद पाए थे, या फिर पोत में आ गया तो ट्रेन में नहीं रख पाए, ट्रेन चल दी। लेकिन उस गरीबी की हालत में पोत का खर्चा, पोत मना शिप का खर्चा इतना ज्यादा था कि जो उनकी जमा पूंजी थी वो भी बहुत कम रह गई। लेकिन बाबा को किससे प्यार था, गुड़ जाने गुड़ की गोत्री जाने, बाबा को प्यार शिव बाबा से था। निश्चिंत होके राजा भरत की जो कोठी थी उसमें जाना था, और वहां पहुंच के जो उसकी खस्ता हालत देखी कि दरवाजे नहीं है उस कोठी में, बरसों से बंद पड़ी थी वो कोठी, और फर्श सारे टूटे पड़े थे, ना चारपाइयां थी, ना बिस्तर थे, ना कुछ था। कुछ ना होने के बाद में भी बाबा ने कभी शिव बाबा को क्या नहीं दिया, उलहना नहीं दिया। क्या उलहना नहीं दिया, मुझको मालूम होता तो मैं ये सब में नहीं फंसता था, ये उलहना ब्रह्मा बाबा ने कभी शिव बाबा को दिया क्या, बताइए दिया क्या। अगर आप उनकी जगह होते तो, अगर आप ब्रह्मा बाबा की जगह होते तो अगर मुख से नहीं बोलते तो मन में तो आता थोड़ा थोड़ा, नहीं आता कि मैं कहां चक्कर में फंस गया। कभी बाबा ने ऐसा बोला क्या ब्रह्मा बाबा ने? नहीं। तो आप सोचो, बाबा के साथ 300 बच्चे थे और बाबा वही ब्रज कोठी, वही जो भरत, राजा भरत की कोठी थी, उसको साफ सुथरा करा के बाबा, और उसमें बच्चे रहते थे। अब दरवाजे तो थे नहीं, तो रात में जो शेर आते थे, भाई वो तो जंगल था, और वो जो कोठी थी ना, वो शमशान घाट के पास थी। सोचो वहां की स्थिति क्या होगी। तो रात में शेर भी आते थे, भालू भी आते थे, और शेर को क्या खुशबू नहीं लगती थी कि अंदर इंसान रहते हैं? लेकिन क्या अंदर जाता था शेर? नहीं। बाहर ही जो कूड़े का डिब्बा रखा होता था, उसी में मुंह मार के और जोर से चिंगाड़ के और वापिस चला जाता था। सोचिए हमारी दादियों ने कैसे कैसे दिन, आज हमारी बड़ी दादियां बहुत से तो अव्यक्त स्थिति में हैं, और थोड़ी ही हमारी दादियां हमारे साथ हैं, लेकिन इन दादियों ने वो कठिन दिन भी पास किए। आबू की ठंडी तो बहुत खतरनाक होती है, पांडव भवन माउंट आबू की ठंडी तो बहुत खतरनाक होती है। दादियों ने वो कठिन दिन भी पार किए जब लेटने के लिए चारपाई नहीं थी, बिस्तर नहीं था, ओढ़ने के लिए गर्म कपड़े नहीं थे, फिर भी अपनी तपस्या के बल पे, एक बल एक भरोसा, बाबा के साथ बनी रही दादियां। दादियां उस समय तो छोटे छोटे 21 22 24 ऐसे छोटी छोटी उम्र की बहनें थी, दादियां थी, लेकिन आप सोचो प्रकृति जीत बन के दिखाया। और सांप भी बताते हैं, सांप भी नीचे घूमते रहते थे लेकिन कभी कोई किसी को छूते नहीं थे। योगियों के बीच में और जहां ब्रह्मचर्य की शक्ति है, तो ये प्राकृतिक जीव भी जो है ना, वो अपनी शफा लेने के लिए आते हैं कि हमको शक्ति मिलेगी इनके पास से, खुशी होती है। तो ऐसे कठिन दिन भी काटे बाबा ने। अभी आप सोचो हम लोग किस पे आए, बाबा ने सागर मंथन किया, ब्रह्मा बाबा ने अपने पिताश्री जी ने सागर मंथन किया, हमारी दादियों ने कितनी गहन तपस्या करी, बहुत बहुत गहन तपस्या करी, आज वो संस्कारों की खान है हमारी दादियां। और हम किस पे आ गए? मक्खन खाने पे आ गए। बोलो मक्खन खाने में मजा आता है ना? बाबा के बच्चे बन गए, क्या बाबा आपको खिलाता है? मक्खन खिलाता है। और ब्रह्मा बाबा ने, कहते ना धर्म के लिए सहन बहुत करना पड़ता है, तो ब्रह्मा बाबा जी, बाबा ने जब शुरू शुरू में बहने अपने परिवार से निकली थी, तो लोगों ने बाबा को नहीं पहचान पाया, और उनके ही परिवार के लोग आके बाबा को घंटों घंटों बहुत कुछ बोला। दादियों को नहीं सहन होता था, बाबा आप ऐसे तो है नहीं, ये तो आपको ऊपर कितना ब्लेम लगा रहे हैं। बाबा ने कहा, बाबा ने इशारे से कहा, कोई कुछ नहीं कहना। बाबा मुस्कुराते रहे, ब्रह्मा बाबा मुस्कुराते रहे। आखिर तो उनको भी शर्म आ गई, कहा लकीराज तुम ऐसे हो नहीं, ये लोग हमको ऐसा भड़काते हैं आपके लिए। तो आप सोचो बाबा ने इतना सहन क्यों किया? बाबा के अंदर तो संस्कार पहले से ही बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्होंने ये जो ईश्वर को नया सतयुगी संसार बनाना था और हम सबको भगवान का बच्चा बनाना था, आज ब्रह्मा बाबा ने नहीं सहन किया होता तो इतने सब आप यहाँ दिखाई देते थे क्या? आज बाबा ने सहन किया, हमारी दादियों ने कितना सहन किया, आज दादियों ने नहीं सहन किया, होता तो क्या आप सबका जन्म होता था क्या? नहीं होता था। तो जब हमारे बड़ों ने इतना सहन करके अपने को कुंदन बनाया, एक बार की बात है कि जब यज्ञ में बैगरी पाठ था तो दाल जो बनती थी ना सभी के लिए बनती थी, लेकिन थोड़ा सा दाल कम होती, हमारी माताएं तो अनुभवी हैं, जब राशन कम होता तो थोड़ा पतली कर देते हैं दाल, है ना, कि सबके हिस्से में आ जाए। तो बाबा मम्मा के लिए एक एक कटोरी दाल निकालते तो सबके हिस्से में भी एक एक कटोरी आती थी दाल। एक बूढ़ी माता थी, वो रोटी जो खाती थी ना वो दाल में भिगो के खाती थी, उसकी दाल खत्म हो गई। और उस समय अपनी जो मनोहर दादी थी वो खाना परोसने की उनकी ड्यूटी थी, तो उन्होंने इस हिसाब से दाल दी सबको कि सबके हिस्से में आ जाए। अब वो बूढ़ी माता जब उठ के आई, उसने कहा मनोहर थोड़ी दाल और दे दो ना, तो मनोहर दादी ने धीरे से, बाबा मामा पीछे बैठे हुए हैं, मनोहर दादी ने धीरे से उनको इशारा किया कि दाल तो कम हो गई, अभी मत मांगो, नहीं तो सबको कैसे मिलेगी। बोली ना थोड़ा सा तो दे दो। अभी क्या हुआ, बाबा ने देख लिया, बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने सुन लिया, बाबा ने कहा ना बच्ची को मेरे हिस्से की दाल दे दो। अभी बाबा का आदेश है तो मनोहर दादी को तो मानना था, उनके हिस्से की दाल दे दी। बाद में मनोहर दादी बहुत आके आंखों से आंसू आ गए, हमारे बाबा को आज खाना कैसे, बाबा को हम खिलाते। तो पहले बहने जो थी ना वो यज्ञ में मधुवन में जो कुछ भी मना कहना चाहिए चलता था, मना जो इसको कहते हैं कि बाबा की जो जीवन कहानी चलती थी वो चिट्ठियों के द्वारा, पत्रों के द्वारा, जो अपनी बहनें दिल्ली में सेवा कर रही हैं, कहीं कर रही हैं, उनके पास वो चिट्ठियां जाती थी। तो दिल्ली में जब बड़ी दीदी ने ये चिट्ठी पढ़ी और क्लास में समाचार सुनाया जाता था मधुबन का, जब उसमें क्लास में बैठ के सुनाया तो एक भाई बैठा था जिसका थोक व्यापार था, राशन की दुकान का थोक व्यापार था, दादियों के भी आंखों में आंसू था, और सारे जो भाई बहने बैठे थे, उस भाई ने कहा दीदी, दादी आप भले एक बोरा मैं दाल निकाल के देता हूँ, उस समय तो 5 ही रुपया किराया लगता था, आप यज्ञ में दे के आओ और हमारे सारे यज्ञ के जितने बस हैं उनकी सही पालना होनी चाहिए। तो आप सोचो मम्मा बाबा ने उस बैगरी पार्ट में भी कभी अपना धैर्य नहीं खोया और इतनी खुशी से बच्चों की पालना करते थे, इतनी खुशी से पालना करते थे, यहाँ तक कि अगर कोई बच्चे बीमार हो जाते थे तो ब्रह्मा बाबा रात रात भर बैठ के उस बच्चे के लिए योग करके उनको योग का, बाबा की याद की शक्ति का सकाश देते थे। जो काम आज डॉक्टर्स नहीं कर पाते हैं, हमने देखा मम्मा बाबा ने बच्चों को ऐसे पाला जैसे कि बड़े बड़े सुप्रीम सर्जन और ऑलमाइटी से मैसेज लेते थे, अभी ये बच्चा बीमार है तो इसके लिए हमको क्या करना है। बाबा जैसे मैसेज देते थे, जैसे बताते थे, उनको वैसे ही ट्रीटमेंट देके और उनको कैसे करते थे, बहुत शक्तिशाली बना लेते थे। तो आज आप देखो भगवान ने जो सृष्टि नई रची है वो किस आधार पे रची है, क्रोध को जीतो, रहम दिल बनो, मीठे बनो, ड्रामा कल्याणकारी है ना। जो हमारे अंदर मन के अंदर व्यर्थ संकल्प चलने की एक आदत हो गई, जिसको आज की दुनिया में कहते हैं टेंशन है, टेंशन है। बाबा ने एक ही शब्द हमको सिखाया, बच्चे ड्रामा कल्याणकारी है। किसी भी घटना में परेशान मत हो, ऐसा क्यों हो गया है, ऐसा किस लिए हो गया है। किसी घटना में नहीं परेशान हो, लेकिन हर घटना में कहीं ना कहीं कल्याण है। वैसे आपका समय तो हो चुका है, मैं 3 मिनट में एक छोटी सी कहानी बताती हूँ कि एक लायंस क्लब का प्रेसिडेंट था और उसके पास मैसेज आया कि उसका लंदन में, उसने बहुत अच्छे अच्छे अपने लायंस क्लब के अंदर बहुत अच्छे अच्छे सोशल सर्विसेज की थी, तो उसका सम्मान होना था लंदन में। उसने अपनी टिकट भी निकाल ली फ्लाइट से। अच्छा अच्छा, ओम शांति।
आबाद कर, सफल कर लो।